ओम शांति। दूर बैठे होते हैं आप तो मुझे भाषण करना पड़ेगा, और ये क्लास भाषण वाली नहीं है। थोड़ा आगे हो जाओ आप, बराबर हो, बस ठीक है ठीक है। ये क्लास है हमारी रूरिहान, बाबा की मुरली में सहनशीलता पर बहुत अच्छा स्लोगन आया पीछे, सहनशील बनो तो संस्कार भी सरल हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और ज्ञान में चलने के बाद तो सहनशीलता बहुत ही जरूरी होती है। किसी को कष्ट सहना पड़ता है, परिवारों की ओर से गाली भी सुननी पड़ती हैं। माताओं ने तो सुनी होंगी, कोई अभी भी सुनती होंगी, सुनते हैं अभी भी, कौन कौन सुनते हैं, देखो कौन कौन महावीर महावीरनिया हैं, सहन कर लेते हैं ना। कहां से आई ये सहनशीलता, कहां से आई सोच के देखो। पहले कोई हमें कुछ कहता तो लड़ जाते, अब सहन कर लेते हैं। तो आज एक समाचार से मुझे ये ख्याल आया कि मैं आज क्लास करूं, चित्त को शांत करें, सहनशील बने, क्रोध पर विजय प्राप्त करें। एक माता का फोन किसी को आया, मेरे पीछे लगे हुए, ये माता कब से बात करना चाहती है, करो करो करो, लाओ भाई। शुरुआत ही रोने से की, मैंने सोचा या तो इसको किसी ने बहुत सताया है या इसने किसी को बहुत सताया है। समझते हैं ये बात, कौन कौन रोते हैं दुनिया में, जिन्होंने दूसरों को ज्यादा रुलाया है वो भी रोते हैं, ठीक बात है ना। तो मैंने कहा बोलो भाई, मेरा पति छोड़ के दूर चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा, आज मैं 100 बार फोन कर चुकी हूँ, सवेरे से अब 10 बजे तक 100 बार फोन कर चुकी, उठाता नहीं। मैंने सोचा ये ज्ञान में है इसलिए हुआ होगा। मैंने कहा क्या हुआ, कहा भाई जी सच्ची बात ये है, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उससे लड़ती रही हूँ पूरा जीवन, अब इतनी लड़ाई हो गई कि ये स्थिति आ गई है। मैंने पूछा ज्ञान कब से लिया है, ज्ञान लिया है, लिया है 6 मास से, कुछ सुधार नहीं हुआ, धीरे धीरे हो रहा है। मैंने कहा अगर 7 दिन तुम उसे फोन न करो तो चलेगा, क्या उत्तर दिया होगा, माताएं लड़ती भी हैं साथ में, साथ में फोन ना आए तो रहा भी नहीं जाता। एक भाई हमारे पास था भी सेवा में, मुझे कहता रविंदर भाई मेरी युगल कहती है वो 15 साल से ज्ञान में है और ये केवल 1.5 साल से है, ये बिल्कुल शांत, और वो क्या होगी फ्रीडम फाइटर्स। तो कहता है मेरी युगल कहती है या तो तुम मेरे से लड़ो या किसी को लाओ जो मेरे से लड़े। मैंने कहा तो तुम ही लड़ लिया करो, उधार कहां से लाओगे पैसा देके। कहा मेरे से लड़ाई नहीं जाता, मेरे से लड़ना आता ही नहीं। कहा मैं तो पूरा जीवन हंसता रहा हूँ, सरल रहा हूँ, मुझ में क्रोध है ही नहीं। मैंने कहा तभी तुम्हारी उसके साथ चल गई गाड़ी। क्रोध को हमें जीतना है, सहनशील भी बनना है, चित्त को शांत करना है। हम क्रोध में आकर दूसरों को बुरा बोलते रहें तो सहन शक्ति तो जवाब दे जाएगी ना, 1-2 दिन की बात हो तो चले, जो साथी रहेंगे जीवन साथी हैं, रोज कोई बुरा बोलता हो तो हार्ट पर भी इफेक्ट आता है, लोग को हार्ट अटैक होते हैं, टेंशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है और अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है आजकल का क्रोध। परिवार टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, संबंधों में बहुत ज्यादा कड़वापन आता जा रहा है। हम सभी को चित्त को शांत करना है। मैं एक बात और कहूंगा आपको, जो केवल हम ही अपनी क्लास में चर्चा कर सकते हैं, संसार में तो उसको न लोग जानते न कोई सोच सकता। आज मैंने पढ़ा तो दिल्ली में, अकेले दिल्ली में रोज 6 रेप होते हैं बलात्कार, और 10 लड़कियों का अपहरण होता है अकेली दिल्ली में। छोटा सा दिल्ली तो छोटा सा राज्य है, मतलब 15-16 लड़कियों से बुरा होता है। काम की अग्नि संसार को जलाती जा रही है। जहां देखो समाचारों में 5-10 यही केस मिलेंगे, टीवी पे यही आ रहा है। हम सबको क्या करना है बोलो? हमारा कुछ कर्तव्य है, क्योंकि हमारे ये स्थान लाइट हाउस हैं, ये बीज हैं। यहां से वाइब्रेशंस अगर जाएंगे तो एक काम की अग्नि में जो संसार जल रहा है इसमें कमी आ जाएगी। जल रहा है, अब 1-2 साल में तो शायद लोग मतलब इस बात को सभी स्वीकार कर लेंगे, कलयुगी लोग भी, कि मनुष्य मनुष्य भी नहीं रहा, दानव भी नहीं रहा, उससे भी आगे निकल गया महादानव। आजकल वो राम रहीम की गाथा बहुत टीवी पे है ना, मैं कभी टीवी चलाऊं कि कोई समाचार सुनेंगे वो ही आ रहा है, बंद कर देता हूं। क्या सारा दिन वही चर्चाएं, कितनों को मरवा दिया उसने, कितनी कन्याओं का जीवन बेकार कर दिया, ऐसा महापापी गुरु बन के बैठा था। और भारत के भोले लोगों का हाल देखो, भक्तों का उसको भगवान मान रहे हैं। अब जरा सा क्लिप दिखाया, मैं ही खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरे से आगे कोई भगवान नहीं। मैंने कहा जब वो ये कहता था कभी सोचता था तुम कितना पापी है? चलो कोई अच्छा महात्मा हो, कोई संत पुरुष हो, उसे लोग भगवान कहने लगे, वो भावना मानी भी जाए, लेकिन ऐसे पापी को जो फटाफट मर्डर कराता है, लोगों को मरवाता है, जिसमें पवित्रता का कोई चिन्ह नहीं है, 0% भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति गुरु बन गया और भारत के भोले भक्त उसके पीछे पीछे अपनी कन्याओं को वहां समर्पित करा रहे हैं। ये पाप की अंतिम सीमा चल रही है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये जानते तो आप भी हैं, समाचार खूब आ रहे हैं। हमें पवित्रता के बल से संसार को निष्पाप करना है। याद करो बाबा का महावाक्य, सीरियस न हो जाए माताएं, अपने कर्तव्यों को समझेंगे। बाबा ने मुरली में कहा है, हो गए होंगे 7-8 मास पहले रिपीट होके आई है, इस संसार में आगे चलकर पवित्रता का रिवोल्यूशन हो जाएगा। रिवोल्यूशन माना क्रांति, क्रांति माना जैसे देखो जब इलेक्शन होते हैं उसको इलेक्शन क्रांति कहते हैं। सब लोग क्या चर्चा करते हैं, माताएं तो कम करती होंगी, इलेक्शन इलेक्शन, इसको वोट देनी उसको नहीं देनी, इसने ये किया उसने ये नहीं किया, यही चलता है ना। एक समय ऐसा आ जाएगा जब हर व्यक्ति, हर धर्म का, हर प्राणी पवित्र बनने का इच्छुक होगा घर जाने से पहले। आज था ना घर जाने की बात, कोई घर जा ही नहीं सकता जब तक मैं ना आऊं। तो हम सभी अपनी पवित्रता को बहुत बढ़ाएं ताकि इस धरती पर पवित्रता की लहर फैल जाए। देवकुल की आत्माएं, 33 करोड़ का गायन है, 2 करोड़ सतयुग की हैं बहुत अच्छी आत्माएं, और 5-7 करोड़ बहुत अच्छी हैं त्रेता के आधे तक की, ये सब आत्माएं अच्छी तरह पवित्र बनेंगी, अच्छी तरह पवित्रता की शक्ति से भरेंगी अपने को। उनके वाइब्रेशंस के द्वारा ये संसार पवित्र होगा, प्रकृति पवित्र होगी, अपनी पवित्रता को बहुत बढ़ाएंगे। पसंद है? बहुत बढ़ाएंगे। हमारी पवित्रता की शक्ति व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ वार्तालाप में, पर चिंतन में, ईर्ष्या द्वेष में नष्ट न होती हो। कोई व्यक्ति बहुत पवित्र हो लेकिन ईर्ष्या द्वेष में रहता हो, पर चिंतन में रहता हो, तो उसके पास पवित्रता की शक्ति नहीं रहती, केवल पवित्रता रहती है। दीपक जलता है, दीपक जलता है बस, लेकिन उसकी रोशनी दूर तक नहीं फैलती। तो सभी बहुत ध्यान देंगे इस पाप के संसार में पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। जो भी ये महान कार्य करे वो सचमुच महान और पुण्य आत्मा होगी, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मुख से कहने से कुछ होगा नहीं। पापी को मुख के वचन असर नहीं करते, लेकिन वाइब्रेशंस उसके पवित्र संस्कारों को जागृत कर सकते हैं। तो हमें अपने क्रोध को शांत करना है। दूसरा महावैरी है क्रोध। कैसे शांत करेंगे? चिंतन करेंगे सभी, और आज अपने को देखेंगे, चेक करेंगे, मुझे क्रोध किन कारणों से आता है। मैं सभी सभाओं में हाथ उठवाता हूँ। अभी मैं कलकत्ते से कल ही आया, दो बड़े बड़े ग्रुप की बट्टी हुई, उनके पास जगह ही नहीं है कलकत्ते में इतनी कि सबको एक साथ बैठा सकें। चार चार घंटे की बट्टी रखनी पड़ी, एक एक बट्टी में 1200-1200 लोग, उससे ज्यादा कोई हॉल नहीं मिलता है ही नहीं। बाकी तो खुले ऑडिटोरियम होते हैं, उसमें तो योग भट्टी होती नहीं। तो मैंने पूछा, बाबा का बनने के बाद किस किस ने बहुत क्रोध छोड़ दिया है? कितनों ने हाथ उठाया होगा? आधों ने उठाया, 500 से 600 भाई बहने, दूसरी सभा में भी इतनों ने उठाया। ये बाबा के ज्ञान का इफेक्ट है ना, कि बहुत आत्माएं अपने क्रोध को बहुत छोड़ देती हैं। थोड़ा बहुत तो रहे वो कोई बात नहीं, लेकिन क्रोध जो अग्नि का रूप लेता है वो अग्नि बुझ जाए, बाकी जो थोड़ा बचा है वो तो बुझ ही जाएगा। तो हमें ये चेक करना है, क्रोध मुझे किस कारण से आता है, उस कारण को ठीक करना होगा। और जो मुरलियों में रोज आता है, आज भी था, पहली लाइन थी निश्चय करो मैं, यही था ना, ब्रह्मा बाबा का बच्चा, शिव बाबा का पोतरा हूं। दुनिया में तो कोई कह ही नहीं सकता एक के ही बच्चे भी और पोतरे भी। तो चेक करेंगे, मैं आत्मा हूं केवल ये नहीं, और बहुत अच्छा इसके साथ साथ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मोटी बात है, ओम शांति रोज करते हैं हम कई कई बार, लेकिन मेरी नेचर ही शांत है। ध्यान देंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्वीकार कराएं अपने को, स्वीकार कराएं। जैसे कोई बहुत अच्छे कुल का व्यक्ति जिसमें कोई कभी पाप न करता हो, कोई शराब न पीता हो, कोई मीट न खाता हो, वहां का एक बच्चा शराब पी लेता है थोड़ी सी, और उसको रियलाइज होता है ये मैंने क्या कर लिया, छूट जाएगी ना फट से। हम स्वीकार करें, शांति मेरी नेचर है, क्रोध नेचर नहीं है। क्रोध नेचर होती तो क्रोध के बाद हम खुश होते, क्रोध के बाद मनुष्य परेशान होता है, अशांत होता है, पश्चाताप करता है, उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, शांति नष्ट हो जाती है। तो मेरी नेचर शांति है, स्वीकार कराएं अपने को। सवेरे उठ के 7 बार याद कर लें, मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, मेरी नेचर शांति है, मैं शांत हूं। 7 बार करेंगे, मैं शांत हूं, बिल्कुल अंदर जाने दें इसको, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। तो जितना जितना ये शरीरीपन बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ेगी, क्रोध हटेगा। सबसे अच्छा तरीका ये है, जितना जितना हम योग करेंगे आत्म कंट्रोल बढ़ता जाएगा, स्वयं पर कंट्रोल बढ़ता जाएगा। केवल ज्ञान के प्रयोग से हम थोड़े समय के लिए चित्त को शांत कर सकेंगे, लेकिन अगर किसी ने ज्यादा बुरा हमसे कर दिया तो फिर क्रोध आ जाएगा, क्योंकि योग की शक्ति हमारे पास नहीं है क्रोध को जीतना और सहनशील होना। सबसे कठिन काम सहन करना कौन सा होता है? कोई अपमान करता रहे बार बार। माताओं के लिए क्या सहन करना सबसे कठिन होता है? बोलो, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम। जिन बच्चों को आपने बहुत प्यार किया है, जिनके लिए जीवन लगा दिया, वो जब अपमान करें, वो जब बुरे वचन बोलें, होगा सहन? थोड़ा होगा, लेकिन अगर सहन कर भी लिया तो अंदर खुशी नष्ट हो जाएगी, अंदर बहुत भारी पड़ेगा, किसी को नींद नहीं आती, अपनों से बड़ा कष्ट हो रहा है आजकल। दूसरा व्यक्ति गाली देकर चला जाए, हम मुस्कुरा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्ति करने लगे, जिनसे हमारा बहुत प्यार है, अपनापन है, तो भारी पड़ता है ना। क्या अभ्यास करेंगे ऐसे में? अपमान कोई करता रहे, थोड़ा अपने विचारों को विशाल बनाएंगे। पहले तो बाबा की वो बात याद रखेंगे, स्वमान में रहने वालों को सम्मान स्वतः ही मिलता है, और स्वमान में रहने से हमारे अंदर इतनी शक्ति भी आ जाती है कि हम अपमान को अपमान समझते ही नहीं। क्योंकि ये बात बाबा की बहुत ही सुंदर है, जिसमें देह अभिमान ज्यादा होता है उसको ही अपमान की फीलिंग भी ज्यादा होती है। कभी कभी मनुष्य कुछ थोड़ा बोलेगा लेकिन हमें अपमान ज्यादा लगे, उसने ज्यादा नहीं कुछ किया, हमें लग रहा है, ये हमारी गलती है। देह अभिमान ज्यादा होने के कारण, अहंकार ज्यादा होने के कारण अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। स्वमान में रहेंगे तो ये फीलिंग कम होती जाएगी। बड़ी बात को हम छोटा रूप देते जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है क्रोध से मुक्त होने के लिए भी और सहनशील बनने के लिए भी। बड़ी बात को छोटा ले लेना, छोटा कर दें। क्यों कहा इसने? ये बार बार मुझे बोलते हैं, ये रोज ही मुझे बोलते हैं, ये नहीं। बहुत छोटा कर सकते हैं हम, लेकिन स्वमान से, क्योंकि स्वमान से हम बड़े हो जाते हैं। तो बाबा की ये बात याद रखेंगे, बहुत सुंदर महावाक्य है, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। सभी छोटी कन्याएं भी ध्यान दें, पूर्वज हैं हम, बड़े बड़े हम हैं। बातों को हम वैल्यू न दें, अपने बड़ेपन को वैल्यू दें, अपने स्वमान को वैल्यू दें, तो सहनशील हो जाएंगे, क्रोध भी नहीं आएगा। तो दो चीजें होती हैं, एक है किसी की क्रोध की नेचर और दूसरा है कुछ कारणों से क्रोध आना, नेचर होना। पीछे एक डॉक्टर सभा में अनुभव सुना रहे थे, ज्ञान सरोवर में डॉक्टर्स का प्रोग्राम था ना 10-15 दिन पहले, तो अनुभव सुनाने के लिए 4-5 डॉक्टर को स्टेज पे बैठाया था। तो एक डॉक्टर सुना रहा था, मुझे क्रोध बहुत आता था। उसके बाद मेरी क्लास थी तो मैं भी पहुंच गया 5-7 मिनट पहले। मैं सोचा क्या चल रहा हूं, जरा देख क्या चल रहा है क्लास में देख लूं। तो वो क्या कह रहा था, मुझे इतना क्रोध आता था मैं तो हवाओं पर भी क्रोध करता था। मैंने कहा ये बात तो हमने भी पहली बार सुनी, ये तो लोग कहते हैं इसको इतना क्रोध है, ये तो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती, मक्खी को मारेगी नाक पे भी लगेगा। लेकिन वो कहता था मैं हवाओं से भी लड़ता था, मतलब क्रोध अति में था। तो वो यही सुना रहा था कि ज्ञान लेने के बाद, राजयोग करने के बाद मेरा क्रोध ही खत्म हो गया। बहुत बड़ी प्राप्ति है ना। कोई डॉक्टर क्रोधी हो तो उसका तो धंधा ही ठप हो जाएगा, पेशेंट 2-4 पेशेंट पे क्रोध कर दे कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि पेशेंट तो पहले प्यार चाहता है ना, डॉक्टर जाते ही कह दे आओ आओ क्या हाल है, क्या बीमारी है, ठीक हो जाओगे तो आधा ठीक हो जाता है, डॉक्टर आंख दिखा दे तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। तो हम योग बल से शरीरीपन के अभ्यास से क्रोध की जो ये अति होती है ना वेग, इसको ठंडा करें। एक चीज इसके लिए हर एक को अच्छी साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी की नेचर लंबे काल से ही शांत होती है, उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। कोई नेचर अनुसार ही बड़े सहनशील होते हैं, उनको भी कुछ जरूरत नहीं। ऐसे सहनशील लोग भी हमें मिलते ही रहते हैं जहां तहां। एक परिवार चार, माँ बाप दो बच्चे, चारों ज्ञान में। जो लड़का है एक लड़की दो माँ बाप, लड़का जो है यही है हमारे हॉस्पिटल में ही, बड़ा सहनशील, शायद उसको जीवन में कभी क्रोध ना आया हो। तो उसकी बहन बता रही थी कि हम बहुत हंसा करते थे कि बोलने वाले हम तीन हैं, सुनने वाला ये बेचारा अकेला है, लेकिन वो सुनता रहता है मजे से, गुस्सा करता ही नहीं। तो कहियो कि नेचर ही ऐसी अच्छी होती है, मुस्कुराते रहना, सहनशील होके रहना, क्रोध है ही नहीं, वो तो देवता है इस धरा पर। लेकिन कईयों की नेचर हजारों साल से क्रोध को साथ लेकर चले आ रहे हैं, शायद पूरा कल्प ही रहा हो द्वापर सतयुग त्रेता में, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी इसलिए किसी पे किया नहीं, लेकिन जैसे जरूरत हुई वो हथियार के रूप में यूज करने लगे। तो इसको अपना हथियार नहीं बनाना है। क्रोध से काम बिगड़ते हैं या सुधरते हैं? मैंने एक उदाहरण दिया उस माता का, मैं जानता नहीं वो कौन है बेचारी, मैं ये भी नहीं पूछा तुम कहां से हो, मुझे तो उसको कुछ अच्छी बातें सुनाए, 29 का जीवन सुधर जाए, बेचारी का पति फिर वापिस आके साथ रहने लगे। मैंने उसे पूछा तुमने रियलाइज तो किया ना कि तुम गलती करती हो? कि नहीं, बहुत ज्यादा रियलाइज हो गया है, अब गुस्सा नहीं करूंगी। मैंने कहा ऐसे कहने से गुस्सा नहीं छूटता है कि अब नहीं करूंगी, वो तो फिर आ जाएगा। अब तुम अच्छे अच्छे अभ्यास करो और उसको क्षमा भी मांगो, कि क्षमा तो तब मांगो जब वो फोन उठाए मेरा। मैंने कहा नहीं, कल सवेरे उठ के मन ही मन क्षमा याचना करना, अब बड़ी तुम हो क्योंकि तुमने ज्ञान लिया है। जिसने ज्ञान लिया है वो बड़े हो गए ना, चाहे आयु में छोटे हो। तो कितना काम बिगाड़ता है क्रोध, बच्चों पे कैसा बुरा असर पड़ता है माँ बाप के क्रोध का। जिन्होंने बहुत क्रोध किया उनको पता होगा ना, सम्मान भी चला जाता है, बच्चे डरे डरे रहते हैं, उन पे दबाव बना रहता है, बुद्धि का उनके विकास नहीं होगा। और आगे चल के जब वो बड़े होते हैं ना, युवा बनते हैं, कई तरह के नुकसान उन्हें जीवन में झेलने पड़ते हैं। और जिनकी पालना प्यार से हुई है, चाहे खाना न मिला हो पर प्यार बहुत मिला हो, उनका जीवन कुछ और होता है। इसलिए मैं प्यार की बात पीछे भी एक सुनाई थी, फिर मुझे याद आ गई, सुना देता हूं। और माताओं को ये बात विशेष ध्यान रखनी है। एक बहन जिसको एक छोटी बच्चा, शायद 3-4 मास का, अब ये बहन कोई बड़ा एग्जाम दे रही थी, अभी की बात है, मुश्किल से 2-3-4 मास पहले, बड़ा एग्जाम देना था इसका। तो इसने सोचा अपने बच्चे को मैं अपनी माँ के पास छोड़ देती हूँ, अब वो नानी है उसकी, वो तो प्यार से उसकी पालना करेगी ही, और मैं पढ़ लेती हूँ, अच्छी तैयारी कर लेती हूँ। इसने पढ़ लिख कर परीक्षा दे दी, और जब बच्चे को लेने गई ना 3 मास के बाद, तो क्या देखा, बच्चा डिप्रेशन में है। बच्चों का डिप्रेशन दिखाई देता है तुरंत, वो न हंस रहा है, न उसे देख रहा है, न रो रहा है, गुमसुम पड़ा है। डॉक्टर के पास ले गए, उन्हें बताया तो डिप्रेशन में आ गया तुम्हारा बच्चा, क्या किया है, सारी कहानी बताई। मैंने फिर उसको सिखाया बच्चे को प्यार देकर, ब्रेन को एनर्जी देकर कैसे बहुत जल्दी डिप्रेशन से निकाल लो। अगर अब इसको डिप्रेशन से न निकाला तो इसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन अभी उसका कोमल है ना, सब कुछ अभी, अगर ब्रेन की वो गांठे हो जाती, जैसे बंद हो जाती है ना ब्रेन में कई चीज, उसको न खोला तो जीवन बेकार हो जाएगा उसका। तो देखो ऐसी शक्ति है प्यार में। अब माताओं के साथ क्या हो गया है, ये कलयुग के अंत की बहुत ही खराब चीज हो गई कि सब बहनें पढ़ी लिखी बहनें चाहती हैं हम नौकरी करें, उनका सोचना भी ठीक है, पैसा भी आएगा लेकिन जो पढ़ाई की उसका यूज भी हो। इससे माताएं अपने बच्चों की पालना नहीं कर पा रही हैं। हो रहा है या नहीं मिस्सी, ये माताएं बताएं। ठीक है दादी है घर में, उसके पास बच्चे को छोड़ गए, किसी ने नौकरानी रख ली उसके पास छोड़ गए, लेकिन इससे तो बच्चे की पालना नहीं होगी ना, बच्चे की पालना तो माँ को ही करनी है। तो ये हमारी भावी पीढ़ी के लिए, ये हम जानते हैं कि महाविनाश का समय है, लेकिन अगर मान लो महाविनाश न होता तो हमारी अगली भावी पीढ़ी बेकार हो जाएगी ना, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। तो प्यार की पालना, क्रोध के नुकसान को समझते हुए प्यार की पालना देंगे। बात केवल बच्चों की नहीं, हर व्यक्ति प्यार चाहता है ना, बड़े भी प्यार चाहते हैं, जो 80 साल के हो गए वो भी प्यार चाहते हैं, वो भी अपनापन चाहते हैं। तो हम चेक करेंगे किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आता है, चेक करेंगे। कोई झूठ बोलता है तब, कोई काम बिगाड़ता है तब, कोई कहना नहीं मानता है तब, अपमान करता है तब, कोई लड़ाई करता है तब, क्यों क्रोध आता है। बहुत सारे कारण, 50 हो सकते हैं, सबके अलग अलग। उसको ज्ञान के बल से हल्का करना है। दूसरा व्यक्ति काम बिगाड़ रहा है, हमें क्रोध आता है तो काम तो हमारा बिगड़ गया ना, काम बिगाड़ रहा है, हम समझें कि इसकी बुद्धि का लेवल कितना है, ये क्यों नहीं काम ठीक कर रहा है, उसको सिखाएं तो बार बार उससे गलती नहीं होगी, बार बार हमें क्रोध नहीं आएगा, नहीं तो वो गलती करते रहेंगे, हम क्रोध करते रहेंगे, दोनों तरफ से नुकसान होता ही रहेगा। तो बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करना सिखाना, सभी भाई बहने ध्यान दें, दूसरों को सिखाना बहुत कल्याणकारी है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति 10 बार में भी न सीखे, लेकिन हमें धैर्यवत होके सिखाना है। बाबा ने हमें कितने सालों से सिखाया है, 80 साल हो गए, 1000 बार सिखाए होंगे ना एक एक बात। उसे गुस्सा आता है कि सुधरते ही नहीं, कभी नहीं कहता अब तुम नहीं सिखाऊंगा, अच्छी बात है तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुम कल पहले भी नहीं सुधरे थे। कहा ऐसा? कहा तुम ही सुधरे थे, तो तुम ही विजय बने थे, तुम ही सब महान आत्माएं हो, तुम ही फिर महान बनोगे। कितना बड़ा धैर्य सागर है ना इस चीज का भी, कि कभी होता ही नहीं कि ये सुधरने वाले नहीं है। हम अपने बाबा से सीखें ये सब चीज जिसके हम बच्चे हैं। और देखो बाबा एक बात कहते थे, मैं उसको रिपीट करता हूं और उस पर आप चिंतन करें। बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कोई मेरे आगे झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उन्हें शायद ये नहीं पता कि कलयुग में सत्यवादी हरिश्चंद मुश्किल से ही मिलेंगे। कोई मेरे आगे झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बाबा ने कहा, उसने झूठ बोला, तुमने गुस्सा किया, कौन अच्छा तुम दोनों में से कौन अच्छा हुआ? झूठ बोलने वाले को तो फिर भी नुकसान बहुत कम है, क्रोध करने वाले को ज्यादा नुकसान हुआ ना, उसकी आंतरिक शक्तियां भी नष्ट हो गई। तो हमें सोचना है, दूसरा व्यक्ति आपके सामने झूठ क्यों बोल रहा है, छोटा बच्चा है वो झूठ क्यों बोलता है माँ के सामने, बताओ माताएं? डरता है, 2-4 बार लग गए हैं ना, अब वो डरता है ये बता दूंगा तो फिर पिटाई होगी, ये झूठ बोल देता है। स्कूल नहीं जाना है, मम्मी पेट दर्द बहुत है, चेहरा भी ऐसा ही बना लेगा, हाथ भी पेट पे घुमाएगा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मीटर तो है ना जो पेट का दर्द नापा जाए। तो हम डर निकाल देना तो झूठ बोलेंगे ही नहीं, प्यार से ही तो सच बुलवाया जा सकता है। देखो बाबा की कहानियों में आता है, निर्मल शांता दादी सुनाया करती थी कि हम छोटे बच्चे थे तो बाबा की दुकान से हीरो की दो चार पुड़िया उठा लाए। हमें तो पता नहीं था कि वो इतनी महंगी चीजें हैं। अब बाबा को पता चला कि सब बच्चे हीरो की पुड़िया ले गए हैं। अब बाबा ने उन्हें प्यार से बुलाया, उन्हें मिठाई खिलाई, बहुत प्यार किया और कहा, अरे बच्चे तुम ये सब क्या ले गए, छोटे से पत्थर से मैं तुम्हें इनसे अच्छी चीज देता हूँ, छोड़ो ये। उन सब ने बड़े प्यार से दे दिए और सबको एक एक अंगूठी दे दी बाबा ने, और चारों बच्चे खुश हो गए, वाह अंगूठी मिली। वो तो उनके काम के ही नहीं थे ना हीरे, वो तो फेंक फांक देते, खो जाते उनसे। तो बाबा बहुत प्यार से बिगड़े हुए काम को लौकिक में भी सुधार देते थे। हम दूसरे को समझें, दूसरों से व्यवहार कैसे करें कि वो गलती ना करें, वो झूठ ना बोले, इस पे भी बहुत ध्यान देना है। इस क्रोध पर तो बाबा ने कई अच्छी अच्छी बातें कही है। बहुत पावरफुल बात ये थी, कई बच्चों के मुख से धुआं बहुत निकलता है, धुआं ही नहीं निकलती, सबसे पावरफुल चीज थी बाबा की। बाबा ने एक शिवरात्रि पर सबसे दान ले लिया था, याद हो आपको, जो पुराने ज्ञान में शायद 7-8 साल हुए होंगे कि बाप का जन्मदिन है तो तुम कुछ गिफ्ट तो दोगे, फिर बाबा ने भी रिटर्न में दी थी है? हाँ, तो क्रोध की गिफ्ट ले ली थी ना। तो एक कहानी सुना देता हूँ, सच्ची घटना। एक सेंटर में सभी से बहनों ने कहा, भाई बाबा ने क्रोध की गिफ्ट ले ली, यहाँ भी सबको देनी है, हाथ उठाओ जो जो देते हैं। एक माता ने हाथ नहीं उठाया, उसे पूछा कि क्यों नहीं, बाबा ने कहा है तो तुम क्यों क्रोध की गिफ्ट नहीं देती? कहती, ये मेरा हथियार है, मेरे घर में 3 लड़के और उनकी बहुएं हैं, उन 6 पर मैं राज करती हूँ इस क्रोध से, तुम मेरा क्रोध ले लोगे तो मेरा तो राज ही चला जाएगा। अब बहनों ने उसको बहुत समझाया, बाबा ने कहा है भगवान कह रहा है, बाबा कोई मनुष्य नहीं, अच्छा तुम एक हफ्ता के लिए दान कर दो, पीछे देख लेना। अब उसको भी लगा अच्छा कि चलो एक हफ्ता तो कोई बात नहीं, राज बाद में भी करती रहूंगी, एक हफ्ता के लिए अच्छा मैं भी छोड़ देती हूँ। घर में गई चुपचाप, नहीं तो घर में जाते ही सब चुस्त हो जाते थे, आ गई भाई, अब पता नहीं क्या 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 कहेगी। लेकिन उस दिन वो चुप, अब सब वो 6 के 6 आपस में खुसर पुसर करें, माता जी चुप है भाई, क्या बात हुई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। दूसरा दिन भी हुआ वो चुप, तीसरा दिन हो गया, शाम को आखिर बड़ा लड़काया हिम्मत करके, माता जी कुछ हो तो नहीं गया आपको? अब माता जी हंसने लगी, कहा बेटा मैंने ना शिव बाबा को क्रोध दान कर दिया है। फटाफट 6 के 6 में हवा फैल गई, एक सेकंड में माता जी ने क्रोध का दान कर दिया है। अभी जो उसे डरे डरे रहते थे ना बहुत, वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा जिन्होंने मेरी हमारी माँ का क्रोध छुड़ा दिया है हम भी उनके पास चलेंगे। 6 के 6 गए, कोर्स किया, ज्ञान में चले। अब बोलो राज क्रोध से हुआ या प्रेम और शांति से? मन समझता है ना मैं राज करता हूँ, करती हूँ, कंट्रोल करता हूँ सबको, ये कंट्रोल नहीं है, ये भय है। कंट्रोल करने के लिए तो बाबा ने सबसे सुंदर बात कही है, जो स्वयं को कंट्रोल करना जानते हैं वही दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाबा ने तो कभी बहुत पावरफुल बात कह दी, यदि तुम अपने क्रोध को ही कंट्रोल नहीं करते तो विश्व को कंट्रोल कैसे करोगे? तो हम बहुत ध्यान दें, चित्त को शांत करना है, बहुत सहनशील बनना है, लेकिन सहनशीलता के साथ स्वमानधारी भी, क्योंकि ये बात बहुत बार सुनने में आती है, ऑफिस में मैं बहुत सहनशील हूँ तो जो ऑफिसर है वो मुझे ज्यादा ही काम देता है, क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं, मुझे 12 घंटे का काम दे देता है, मैं क्या करूँ? लोग आते हैं इस तरह का प्रश्न लेकर, मैं बहुत सहनशील हूँ, लोग मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं ऑफिस में क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं। बात तो ठीक है ना। तो सहनशील के साथ क्या होना चाहिए? स्वमानधारी। तो हमारी सहनशीलता दूसरों को कमजोरी नहीं लगेगी, हमारी सहनशीलता बन जाएगी हमारी सहन शक्ति। पीछे बाबा ने एक और सुंदर बात कही थी, जब मुरलियां चलती थी ना बाबा की बड़ी बड़ी, तुम्हें सहन इसलिए भी करना है क्योंकि भगवान ने कहा है, ये भगवान की आज्ञा है। यहां कईयों ने किया इसका प्रयोग, ये बहुत अच्छी बात है ना। हमें जो भगवान आज्ञा कर रहा है अब हम उसको अपनाएंगे, ये तो नहीं सोचेंगे दूसरा क्या कहता है, वो क्या समझेगा। भगवान ने मुझे कहा तुम्हें क्रोध नहीं करना है, तुम्हें सहनशील बनना है, मुझे उसकी आज्ञा माननी है, मुझे देखना ही नहीं लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं जिसके कारण मुझे क्रोध आता है। तो बहुत अच्छी तरह इन चीजों पर सभी चिंतन करेंगे, चित्त को शांत करेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे, बाबा ने कह दिया है किसी भी विकार का अंश यदि रह जाता है तो क्या बन जाएगा, वो वंश बन जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा विनाश काल में, जब चारों ओर ये होगा। जहां से मैं शुरू किया फिर उसको बता देता हूं, जिन ब्राह्मणों में काम का अंश रह गया है ज्यादा, अब संसार में जो काम की आंधी चल रही है उसका प्रभाव इनके काम के बीज को भी अंकुरित कर रहा है, इसलिए बहुत कुमार कुमारियां ज्ञान छोड़कर जा रहे हैं, अदर कुमार कुमारियां भी ज्ञान छोड़कर जा रहे हैं। तो सबको ये बहुत अच्छी तरह ज्ञात हो, केवल पवित्र बन गए क्योंकि बाबा ने कहा है ये काफी नहीं, योग बल चाहिए इन वासनाओं के बीज को नष्ट करने के लिए, क्योंकि आंधी और तेज चलनी है या नहीं, ये आंधी और तेज चलेगी। और जिसने भी इन विकारों को केवल दबाया है, नष्ट नहीं किया है, उनको बहुत नुकसान हो जाएगा, ये अग्नि उनको जला सकती है। तो योग बल बढ़ाएंगे, कम से कम 4 घंटा योग इन विकारों की अग्नि को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। हम ऐसा ही समझ लें, 4 घंटे हम योग करेंगे, ये विकार शांत होंगे, इनका बीज नष्ट होगा और विकर्म विनाश करने के लिए हमारा योग बहुत अच्छा होता जाएगा। एक योग का सिंपल सा तरीका आपके ख्यालों में रहे, हम परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा का स्वरूप देखेंगे परम धाम में, और फिर अनुभव करेंगे कि बाबा से मुझ आत्मा को इतना आकर्षण हो रहा है कि मैं आत्मा यहां से निकलकर खींच के चलने लगी ऊपर की ओर और पहुंच गई बाबा के पास। बहुत अच्छा संकल्प रहेगा, सहज ही हम खींच के बाबा के पास चल जाएंगे और बस मुझ आत्मा में बाबा की शक्तियां, बाबा की किरणें, उसके वाइब्रेशन समाने लगे। ये अभ्यास कई बार किया जा सकता है, सोने से पहले भी कर लेना, सवेरे भी, और दिन में बीच बीच में एक एक मिनट भी कर लेना चाहिए। जब हम बीच बीच में अभ्यास करते हैं तो हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये समस्या भी संसार में बढ़ती जा रही है व्यर्थ की। तो बीच बीच में अभ्यास करेंगे, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। अब ऐसा ही योग करेंगे, महाज्योति को देखेंगे परम धाम में, और मैं आत्मा खींच के जा रही हूं उसकी ओर। ओम शांति। प्रभु।